सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भगवान की कृपा से हमने गीता के पहले 6 अध्याय को समाप्त किया। इस 6 अध्याय को षटक कहते हैं, जैसे षट संपत्ति होता है ना, षट मतलब 6, तो इसको एक षटक कहते हैं। तो गीता में ऐसे 3 षटक हैं। अध्याय 1 से 6 तक पहला षटक है, 7वें से 12 तक दूसरा षटक है, और तीसरा षटक जो है 13 से लेकर 18 तक है। तो कुछ महात्माओं का कहना है कि जैसे तत्त्वम असि महावाक्य में 3 शब्द हैं, तत् त्वम और असि, उसी तरह से पहला षटक जो है वो त्वम पदार्थ को जो है इंगित करता है, त्वम को इंगित करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीव की साधना के बारे में बताया, कर्मयोग करो, चित्त शुद्धि करो, उसके बाद ज्ञान ध्यान इन सब की चर्चा हुई, इसलिए इसको हम तम पद के हिसाब से महात्मा लोग इसे कहते हैं। अच्छा, ये 7वां अध्याय जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज, इसमें आप देखिए कि इसमें कोई प्रश्न नहीं है अर्जुन का, अर्जुन का प्रश्न नहीं है। नियम ऐसा है कि ज्ञान जो है बिना मांगे नहीं दिया जाता, बिना मांगे नहीं दिया जाता है, मगर इसके 3 एक्सेप्शन हैं, 3 जगह जो है हम इस रूल को नहीं मानते। पहला है अगर ये पुत्र के बारे में किसी का हो, जैसे पुत्र ज्ञान नहीं मांगता है, मगर हम उसको जब एयरपोर्ट पर बाय बाय करने जाते हैं तब भी उसको अंतिम ज्ञान सलाह देते रहते हैं, वो मांगता नहीं है मगर हम देते हैं। उसी तरह शिष्य, शिष्य को भी वो मांगता नहीं है मगर गुरु जो है उसका इंटरेस्ट देख के उसको बताता रहता है कि नहीं तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आज तक ज्ञान नहीं दिया था, जब उसने सरेंडर किया उसके बाद से अब वो भगवान की उत्तरदायित्व हो गया, भगवान का उत्तरदायित्व हो गया कि अब उसकी हमको आगे उसको बढ़ाना है, उसको निश्चित गोल तक हमको लेके जाना है। तो शिष्य ये भी एक्सेप्शन है। और तीसरा जो है रिलेटिव्स, कई बार रिलेटिव्स मतलब माता पिता हैं, ये सब हैं, संबंधी हैं, निकट संबंधी हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, वो अगर कुछ नहीं पूछे फिर भी हम तो ज्ञान दे देते हैं, कोई पूछे नहीं पूछे हम कोविड के बारे में सलाह सबको हम दे देते हैं, अभी क्या करना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहना है, अननेसेसरी आप मत जाओ, जितना हो आप इंस्टाकार्ट से मंगा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा हम लोग कहते रहते हैं, नहीं मांगते तब भी हम बताते रहते हैं। अच्छा, इस अगले 6 अध्याय में भगवान के बारे में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा होगी इसलिए ये तत्पदार्थ है। तत्व त्वम असि के अंदर में पहले 6 अध्याय त्वम पदार्थ जीव के लिए थे, 7 से 12 तक जो है वो तत्पदार्थ है, वो भगवान के लिए हैं, भगवान की चर्चा की जाएगी इसलिए इसको तत्पदार्थ कहते हैं। देखो, भगवान अपने बारे में ज्ञान के बारे में बताएंगे, हमारी बुद्धि का क्या है, बुद्धि का एक नियम यह है कि वो हरदम एनालाइज करती रहती है, डिस्क्रिमिनेट करती रहती है, हैं? एक अगर आपने पेड़ को देखा तो बुद्धि आपको बताएगी कि इसमें एक तना है, इसमें एक शाखाएं हैं, उसके बाद पत्ते हैं, फल है, फूल है, मगर ज्ञान क्या है, ज्ञान कहता है कि ये सब मिला के एक ही चीज है, एक वृक्ष है, दैट्स ऑल। आत्मज्ञान क्या बताता है? आत्मज्ञान भी यही बताता है कि सब चीजों आप देख रहे हैं, नानत्व जो देख रहे हैं उसमें एक ही है, सब जगह एक विद्यमान है, ये ज्ञान है। तो अध्याय 6 का 47वां श्लोक इस अध्याय का बीज है। देखो बराबर भगवान ऐसा करते हैं कि जब अध्याय खत्म करते हैं तो अगला अध्याय क्या होगा उसका बीज वहां छोड़ देते हैं, सीड इसको हम लोग कहते हैं। कौन सा है वो? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यह माम समय युक्तम मत। देखो इस श्लोक के अंदर तीन चीजें हमको, तीन विषय मिल जाएंगे इस श्लोक के अंदर में, जिसको भगवान इस 7वें अध्याय में बताने जा रहे हैं। क्या तीन विषय हैं? माम, माम माने भगवान, भगने भगवान अपने बारे में खुद बताएंगे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और किसको बताने जा रहे हैं? भगवान बताने जा रहे हैं अर्जुन को। देखो अर्जुन कितना भाग्यशाली है, भगवान जैसे उसको गुरु मिले और सामने खड़े होकर उसको ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, तो पहला जो है 7वें अध्याय में है भगवत स्वरूप की चर्चा। माम मतलब भगवत स्वरूप की चर्चा, भगवान कैसे हैं उसकी चर्चा होगी। दूसरा श्रद्धावान भजते यह, श्रद्धावान भजते यह का मतलब क्या हुआ? भगवान की भक्ति, तो भक्ति के बारे में भी भगवान बताएंगे। भजते मीन्स भजन, भक्ति या भजन क्या है? भक्ति भजन का रूट जो है उसकी जड़ एक ही है, प्रेम। आप भजन करते हैं उसमें भी प्रेम होता है, भक्ति करते हैं उसमें भी प्रेम होता है, तो एक कॉमन फैक्टर है इसके अंदर में, और वो है प्रेम। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, भक्त का स्वरूप क्या है? देखो भक्ति क्या है, भक्त क्या है, भगवान क्या है, देखो तीनों के बारे में आ गया। एक श्लोक के अंदर भगवान ने ऐसे उसको इंगित किया कि हम तीन विषयों की चर्चा करेंगे, एक को भगवत स्वरूप बताएंगे, एक भक्ति के बारे में बताएंगे, और एक भक्त का स्वरूप क्या है। जिस भक्त का मन पूरा पूरी भगवान में लगा हुआ है उस भक्त का स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, ये भगवान हमको बताएंगे। अब इस अध्याय में कुल मिला के 30 श्लोक हैं, 30 श्लोक हैं, तो 1 से 6 श्लोक है उसमें ब्रह्म की प्रकृति के बारे में बताएंगे। भगवान बताने जा रहे हैं कि एक परा प्रकृति होती है, दूसरी अपरा प्रकृति होती है, दो किस्म की प्रकृति होती है, भगवान उसको चर्चा बताएंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे अपरा प्रकृति, प्रकृति क्या है और परा प्रकृति क्या है। 7 से 11 श्लोक के अंदर भगवान बताने जा रहे हैं कि ब्रह्म कैसे अपने को व्यक्त करता है, ब्रह्म कैसे अपने को व्यक्त करता है, ये 7 से 11वें श्लोक तक आएगा। 12 से 15 श्लोक के अंदर अश्रद्धालु ब्रह्म को नहीं खोजते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है भगवान में तो वो भगवान को नहीं खोजते हैं, किसको खोजते हैं? संसार को खोजते हैं। जो अश्रद्धालु हैं, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो भगवान की खोज नहीं करते हैं, वो खोज करेंगे संसार की, जगत के बारे में वो जानना चाहते हैं। 16 से 19 तक भगवान अपने 4 किस्म के भक्त के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे भक्त हैं, 4 किस्म के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। 20 से 25 श्लोक के अंदर बताया गया कि विभ्रांत भगवान की पूजा करते हैं मगर वो क्या मांगते हैं, जो विभ्रांत है, विभ्रांत मतलब जिनको ठीक ठीक पता नहीं है, डेल्यूडेड है, भगवान से क्या मांगना चाहिए उनको नहीं पता है, मगर वो क्या मांगते हैं, तो हर नाशवान चीज को ही मांगते हैं। ये देखेंगे विस्तार से हमको जो है भगवान बताएंगे कि हमारे बहुत से भक्त हैं मगर हमसे क्या मांगते हैं, नाशवान चीज मांगते हैं। अच्छा, 26 से 30 श्लोक के अंदर बताया ज्ञानी ब्रह्म को चाहता है एवं पाता है, ज्ञानी भक्त जो है वो क्या चाहता है, वो ब्रह्म को जानना चाहता है, ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है। और भगवान कहते हैं वो ब्रह्म को पा भी जाता है, पा भी जाता है। तो ये जो है विषय इस अध्याय के अंदर में विस्तार से हम देखेंगे। अब श्लोक नंबर 1।
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच।
श्रीभगवानुवाच।
मय्यासक्तमनः पार्थ।
मय्यासक्तमनः पार्थ।
योगं युञ्जन्मदाश्रयः।
योगं युञ्जन्मदाश्रयः।
असंशयं समग्रं माम्।
असंशयं समग्रं माम्।
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
श्रीभगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं माम्। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
सो मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मई आसक्त मना हे पार्थ, अत्यंत प्रेम से जिसका मन मेरे में लगा है। मय्यासक्त मेरे में, भगवान में जिसका मन पूरी तरह से लगा हुआ है। योगम युंजन योग कर रहा है, उसकी चेष्टा कर रहा है, भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। दो चीज। तीसरा मदाश्रय। मदाश्रय मेरा परायण है, मेरे को अपना परम मानता है, मेरे को पाना चाहता है। उसके जीवन का गोल जो है, लक्ष्य है कि मेरे को भगवान मिल जाए। मदाश्रय। असंशयम समग्रम माम। असंशय विदाउट डाउट, कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा आपको ज्ञान दूंगा जिसमें आपके अंदर कोई संशय नहीं रहेगा। असंशयम समग्रम, भगवान कहते हैं मैं पूरा का पूरा बताऊंगा आपको। समग्रम, कुछ बाकी नहीं रखूंगा, कुछ छिपा के नहीं रखूंगा, अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु माम। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, मुझको जिस प्रकार जानोगे इसके बारे में सुनो। मुझको किस प्रकार से जान पाओगे, भगवान कहते हैं इसके बारे में मैं पूरा आपको ज्ञान दूंगा। किसको? भगवान कहते हैं मई आसक्त मना पार्थ है, जिसका मन पूर्णतया सुगार रूप से भगवान में आसक्त है। याद रखिएगा, पूर्णतया मन भगवान के अंदर आसक्त है। कैसा आसक्त है? तो हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र में देखा था, तत् विस्मरणे परम व्याकुलता इति। अगर एक क्षण के लिए भगवान को भूल गए फिर व्याकुलता हो जाती है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? जैसे मछली को पानी से निकाल देने पर व्याकुल हो जाती है, एक सेकंड पानी के बाहर रहना नहीं चाहती है, उस तरह से मन व्याकुल होना चाहिए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। भक्त जो है प्रेम के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। ऐसा कोई उदाहरण है? नारद भक्ति सूत्र में हमने देखा था, नारद जी ने उदाहरण भी दिया। कौन है ऐसे? यथा ब्रज गोपिका नाम। यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपी लोग बराबर खाली कृष्ण का ही चिंतन करती थी, चिंतन ही करती थी। कैसा चिंतन करती थी? गोपी दूध बेचने जाती थी तो ऐसा नहीं कहती थी दूध ले लो, दूध ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। दूध क्या बेचना? कृष्ण को बेचने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि मन में दूध नहीं है, मन में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। तो बोलना चाहिए दूध ले लो, वो कहती क्या है? कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। ये है मन। यथा गोपी का नाम, ब्रज गोपी का नाम। इसको मत चित्त भी कहते हैं। तो मत चित्त का मतलब आपको अब समझ में आ गया, मत चित्त 100% ऑफ माइंड, एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होगा। विस्मरण होने से व्याकुलता होगी, अरे मैं भगवान को भूल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मदाश्रय, एक होता है मत चित्त, एक होता है मत परह। मत चित्त जो है इंडिकेट करता है मन को, और मत परह इंडिकेट करता है बुद्धि को। तो हमारे पास में दो इंस्ट्रूमेंट हैं, सटल इंस्ट्रूमेंट, मन और बुद्धि। तो मई आसक्त मना पार्थ से भगवान ने कह दिया कि आप अपने 100% मन मेरे को दे दो। एक मदाश्रय यानी मत पर है, बुद्धि से विचार कर लो कि मैं ही आपका लक्ष्य हूं, मैं ही आपका आश्रय हूं, मैं ही आपका आश्रय हूं, और आपको जो भी कुछ चाहिए आप भगवान से मांगो। अगर आपका समर्पण पूरा है भगवान के प्रति, तो आप भगवान से जो कुछ भी दरकार है मांग सकते हो, भगवान देंगे। मगर समर्पण पूरा होना चाहिए, 100% समर्पण होना चाहिए। भगवान अगर भक्त से, भगवान अगर भक्त अगर भगवान से भक्ति मांगता है वो भी दे देते हैं भगवान। बहुत डिफिकल्ट है वो, बहुत डिफिकल्ट है। सुंदरकांड में आप देखेंगे विभीषण ने राम जी से क्या मांगा, अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। देखो विभीषण जो है जाके जब भगवान से राम से मिला तो क्या मांगता है, राज तो भगवान खुद ही दे दिए उसको कि तुमको राजा हम घोषित कर देते हैं, तो उससे खुश नहीं हुआ, वो सांसारिक चीज है, एक दिन राज भी चला जाएगा, अब शरीर भी छूट जाएगा, क्या राजा। वो कहता है हमको भक्ति दीजिए। कौन सी भक्ति, कृपाल निज भगति पावनी, कैसी भक्ति, सदा भक्ति रहे देव सदा, और उसको क्या करते हैं, शिव मन भावनी, भगवान शिव राम 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 सदा करते हैं। देखो हमको वो भक्ति दो जो भगवान शिव के पास में है। भगवान शिव क्या करते हैं, राम 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 करते हैं। विभीषण क्या कहता है, मेरे को वो भक्ति चाहिए। अब भगवान ने तुरंत कह दिया तथास्तु, दे दिया। याद रखें भगवान से क्या मांगना चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण कहते थे, एक डॉक्टर उनके पास आता था, तो उसको कहते थे कि अगर मान लो कल तुमको भगवान मिल जाए, तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम क्या मांगोगे, क्या डिस्पेंसरी मांगोगे भगवान से। बोले भगवान से शुद्ध प्रेम मांगना चाहिए, शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए कि भगवान मेरे को शुद्ध भक्ति दे दो, ये मांगना चाहिए। तो भक्ति में भगवान साधन एवं साध्य दोनों हैं, मगर मद एक शरण होना चाहिए, मेरे को शरण में जाना होगा, भगवान ही हमको ले चलेंगे। भगवान आप इस 6 अध्याय के अंदर में बताएंगे हमको कैसे साधना करनी है, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, सब बताएंगे वो। योग उंजन, तो दो चीजें पहले हमने देखी, मत चित्त और मत परह। मत चित्त मतलब मन, मत परह मीन्स बुद्धि। तो हमसे दो चीजें भगवान ने ले ली, बोले और आपको क्या करना है, योगम उंजन। अब तीसरा वस्तु आपके पास क्या है, BMI चार्ट के अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास में, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। माइंड मैं आसक्त मना पार्थ से भगवान ने मांग लिया, इंटेलेक्ट मदाश्रय मत परह से आपसे मांग लिया, अब बचा क्या, शरीर। शरीर के बातें कहते योगम युंजन, मन समाधानम अभ्यसनम, मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करो। देखो अभ्यास भी करना है आपको, प्रयत्न भी करना है, यू हैव टू पुट इन एफर्ट। ये कैसे होगा, ये शरीर का हो गया। तो आपके पास में अगर 3 इंस्ट्रूमेंट हैं और तीनों ही आप जो है भगवान में लगा देंगे, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, जगत में पहुँचेंगे कि भगवान में पहुँचेंगे। बहुत सिंपल है, आप भगवान के पास पहुँच जाओगे। आप कभी भी जगत की तरफ नहीं जा पाओगे। तो मैया सत्मना मदाश्रय योगम उंजन, जो करता है असंशयम समग्रम माम ज्ञासति, मेरे को वो पूरा का पूरा जान लेगा, पूरा जान लेगा। कैसा? संशय रहित मेरा पूरा स्वरूप को जान लेगा। क्या है मेरा स्वरूप? कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वेश्वर हूँ, मेरी क्या विभूति है, ऐश्वर्य क्या है, मैं सगुण हूँ, निर्गुण हूँ, इन सब रूप को वो जान लेता है। देखो भगवान आत्मज्ञान की महिमा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम जो है साधक ज्ञान अभिमुखी हो जाए। अभी हम किधर हैं? अभी हम जगत की तरफ में हैं, ज्ञान से उल्टी तरफ में हैं, भगवान से उल्टी तरफ में हैं। तो ये सब चीजें जब बताते हैं भगवान कि अगर ऐसा करोगे तो तुम मुझको पालोगे, मतलब क्या हुआ? भगवान चाहते हैं कि हे साधक, तुम अपने मन को मेरी तरफ मोड़ो। इसको कहते हैं ज्ञान अभिमुख हो सके। अच्छा, अब भगवान कहते हैं वो ज्ञान क्या है? तो शंकराचार्य जी यहां कहते हैं, आगे कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त मुझ परमेश्वर, आगे बताएंगे कि मैं परमेश्वर कौन हूं, सर्वज्ञ हूं, मेरे से ही सब उत्पत्ति होती है, मेरे में स्थिति होती है, मेरे में लय होगा, ये सब चीजें बाद में बताएंगे। मैं जिसका मन आसक्त हो वो मैया सक्त मना है, और मैं परमेश्वर ही जिसका एकमात्र अवलंबन है, एकमात्र। आपको बुद्धि से निश्चित कर लेना है कि मुझे ये प्राप्त करना है, बस दैट्स ऑल, एकमात्र अवलंबन है। मद आश्रय हे पार्थ, ऐसा मैया सक्त मना और मदाश्रय होकर तू योग साधन करता हुआ, अर्थात मन को ध्यान में स्थित करता हुआ, जिस प्रकार मुझको संशय रहित समग्र रूप से जानेगा, सो सुनो। कैसे तुम मेरे को जान लोगे, उसके बारे में भगवान बताते हैं। क्या हम जान लेंगे? इसलिए तू उपयुक्त गुणों से संपन्न होकर विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न मुझ समग्र परमेश्वर को जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, भगवान निस्संदेह ठीक ऐसा ही है, वह प्रकार मैं तुझसे कहता हूं, सुनो। श्लोक 2।
ज्ञानम तेहम सविज्ञानम,
ज्ञानम तेहम सविज्ञानम,
इदं वक्ष्याम्यशेषतः, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वानेह भूयोन्नत, यज्ञात्वानेह भूयोन्नत, ज्ञातव्यमवशिष्यते, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वानेह भूयोन्नत, ज्ञातव्यमवशिष्यते।
ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्यामि अशेषतः, यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को ज्ञान दूंगा अर्जुन, तुमको ज्ञान दूंगा, और केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान भी दूंगा, ताकि तुम अनुभव कर सको। ऐसा ज्ञान दूंगा, उसकी साधना भी बताऊंगा, जिससे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, उसकी अनुभूति कर सको, उसका विज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो। इदम बच्छामी अशेषतः, मैं अपने पास कुछ शेष नहीं रखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हमने थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा रख लिया, अब आप क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। मैं पूरा बताऊंगा, शेषतः। यत् ज्ञात्वा न यह भूय, इसको जानने के बाद में यह भूय इस पृथ्वी पर, अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, और कुछ जानने का ही नहीं, मेरे को जान लिया, सब जान लिया, और कुछ नहीं जानने का है। अहम ते इदम बच्छामि, अर्जुन को प्रमाणिक ज्ञान भगवान खुद देने जा रहे हैं। अर्जुन कितना भाग्यशाली है, गीता का ज्ञान अर्जुन को मिल रहा है। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, सीधा डायरेक्ट एकदम। किसी भी गुरु का या जो भी कमेंटेटर है उसने अपना उसमें राग द्वेष नहीं लगाया, अपनी बुद्धि उसमें नहीं लगाई है, सीधा भगवान दे रहे हैं। अच्छा, अशेषतः क्यों भगवान आप मेरे को अशेषतः क्यों दोगे? तो देखो, भगवान ने अर्जुन को आगे कहा था, भक्तोसि मे सखा चरेति, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरे डिवोटी हो, इसलिए मैं तुमको पूरा ज्ञान दूंगा। हमारे भारतवर्ष में क्या करते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक जो हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत नाम किया है, उसके बाद वो ज्ञान वहाँ पूरा नहीं देते हैं, थोड़ा सा रख लेते हैं। क्यों? अब ये मेरे पास ट्यूशन लेने के लिए आए, जब वो ट्यूशन लेने आते हैं तब पूरा ज्ञान देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि एक एक शिक्षक के घर में 50-50 स्टूडेंट बैठने की व्यवस्था है, आपने नहीं देखा होगा, मगर उनके घर के अंदर में जो है वो अपना माइक वगैरह सब लगा के रखे हैं, बोर्ड वगैरह सब है, 50 बच्चे एक साथ बैठ के दिखते हैं, सुनते हैं। ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा देनी है, जिनको IIT में बैठना है, जिन्हें 100% चाहिए, 0.1% कम नहीं चाहिए, वहां पर उनको अशेषता ज्ञान मिलता है। ज्ञानम सभी ज्ञानम, ज्ञानम माने शास्त्र ज्ञान, भगवान जो बताएंगे गीता के अंदर वही ज्ञान उपनिषद में लिखा हुआ है, वही शास्त्र का ज्ञान है। देखो, भगवान ने गीता 5200 साल पहले दी, मगर उपनिषद उसके पहले से थे, तो भगवान कोई नई चीज नहीं बताने जा रहे हैं, वो ज्ञान जो है शास्त्र में जो ज्ञान है, शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र कहता है, शास्त्र योनि है, जो शास्त्र में कहा गया है वही भगवान बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, शास्त्र प्रमाण है, प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज है। विज्ञान क्या है, मैं विज्ञान भी बताऊंगा। देखो, भगवान ने दो वर्ड यूज किए हैं, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या हुआ, यानी अनुभूति तुम्हारी करवा के छोड़ूंगा, अपरोक्ष अनुभूति होगी, केवल ज्ञान बता दिया ऐसा नहीं है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आगे बढ़ के जाना है ये भी भगवान बताएंगे, ताकि आपको अपरोक्ष अनुभूति हो जाए। ठीक है, हमने नारद भक्ति सूत्र में देखा, संकीर्त्यमान शीघ्रम एव अभिप्रवृत्ति अनुभावयति भक्तान, अगर आप संकीर्तन करते हैं उसके बाद भगवान की ड्यूटी है, वो अपने आप को व्यक्त करेंगे, व्यक्त करने के बाद वो बता भी देंगे मैं कौन हूं, ये भी उनका ही काम है। आपको छोटे रूप में बता देते हैं, ज्ञान क्या है, विज्ञान है, ब्रह्म है, ये ज्ञान है, ब्रह्म मैं हूं ये विज्ञान है, ब्रह्म है ये शास्त्र का ज्ञान है। जिस टाइम अनुभूति हो जाएगी ब्रह्म मैं हूं ये विज्ञान है, तो भगवान ज्ञान देंगे, ब्रह्म के बारे में बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, ईश्वर के बारे में बताएंगे, ये ज्ञान है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि तुम ईश्वर के पास में कैसे पहुंचोगे, क्या साधना करनी है, क्या क्या करना है, नहीं करना है, ऑलरेडी सूत्र रूप में बता दिया है। क्या बताया है, मई आसक्त मन मदाश्रय योगुंजन, सूत्र रूप में बता दिया क्या क्या करना है, आपसे क्या लेना है हमने। ठीक है, अच्छी बात है भगवान। उसके बाद में इस ज्ञान की महिमा क्या है, आप ये कहते हो ज्ञान और विज्ञान मैं आपको दूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, क्या महिमा है इसकी, ग्लोरी क्या है, यत ज्ञातवा न यब हुए अन्यत ज्ञातव अवशिष्यते, फिर संसार में और जानने योग्य शेष कुछ नहीं रहता है। देखो, इससे ये नहीं समझ लेना कि और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है, भगवान को जानने से आप जो है फिर फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए और डॉक्टर भी हो गए, इंजीनियर भी हो गए, सब हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा गलत नहीं समझ लेना। यह का मतलब है तत्व ज्ञान में और जानने का कुछ नहीं रहेगा। तत्व ज्ञान के बारे में तुमको अशेष तरह पूरा 100% बता देंगे हम, और कुछ जानने का नहीं रहेगा। दूसरा, मोक्ष साधन या उपाय में भी और कुछ जानने का बाकी नहीं रहेगा, उसकी साधना भी 100% बताएंगे, और अनुभूति के पश्चात और कुछ जानने का शेष भी नहीं रहेगा। एक बार अनुभूति हो गई, क्या जान लोगे, और क्या जानना है, और कुछ जानना ही नहीं है। अशेष ज्ञान शास्त्र पर आधारित होगा, आप उसे जानकर अनुभव कर सकते हैं, आप भी सर्वज्ञ बन जाएंगे, सर्वज्ञ बन जाएंगे। भगवान कहते हैं ज्ञान मैं तुझ विज्ञान सहित अर्थात अपने अनुभव सहित निशेषतः संपूर्णता से कहूंगा। शंकराचार्य जी बताते हैं पूर्णता से बताऊंगा। श्रोता को सम्मुख अर्थात सावधान करने के लिए जिसका वर्णन करना है उस ज्ञान की स्तुति करते हैं, इसको ज्ञान अभिमुखी करना कहते हैं। हम सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तुम मुझको जानना चाहते हो, मैं तुमको बताता हूँ, और पढ़ो, साधना करो ताकि तुम्हारी अनुभूति हो जाए। जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर इस जगत में पुरुषार्थ का कोई साधन जानना शेष नहीं रहता, अर्थात जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है, और पुरुषार्थ नहीं करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष खत्म हो गया। जब हमको अपरोक्ष अनुभूति हो गई उसके बाद और कुछ पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ सब उसके पहले है, मोक्ष के पहले आपको धर्म अर्थ काम करना है। एक बार मुक्ति प्राप्त हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद में तो कुछ करना ही नहीं है। अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल वाला होने के कारण दुर्लभ है, अति उत्तम होने के कारण बहुत दुर्लभ है, यह ज्ञान दुर्लभ है। गीता शुरू करने के पहले भी हमने शंकराचार्य जी ने लिखा था कि ये गीता का ज्ञान बहुत दुर्लभ है, इसको समझना दुर्लभ है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मैं इसके ऊपर में कमेंट्री या भाष्य लिख रहा हूँ। क्योंकि जब उन्होंने भाष्य लिखा उसके पहले बहुत से लोगों ने इसके कई किस्म के जो है अर्थ निकाले, कई किस्म के अर्थ निकाले। जब शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर में कमेंट्री लिख दी उसके बाद से सब ठीक ठीक हो गया। अभी भी आप जो है गीता के ऊपर कमेंट्री जो है हजारों कमेंट्री है, आप अगर चाहोगे, आप अगर गूगल करना शुरू करोगे या दूसरी गीता पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तब? हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, जैसा शंकराचार्य जी ने लिखा है वही पढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा, यह ज्ञान दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है अब बताते हैं तीसरे श्लोक में।
मनुष्यानाम सहस्रेषु मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः
मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हजारों हजारों पुरुषों के अंदर कोई एक यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पहले तो है किसी के मन में ये विचार ही नहीं आता है कि मुझे भगवान को जानना है, ऐसा विचार नहीं आता है, बहुत कम लोगों के अंदर आता है, बहुत कम लोगों में आता है। तो मनुष्यानाम एक तो देखो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, विवेक चुड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम त्रयम एव एतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। दुर्लभम त्रयम एव एतद्, तीन चीजें बहुत दुर्लभ है, तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। वो बड़े देवताओं के अनुग्रह से, उनके ग्रेस से ये मिलती है। क्या है ये तीन चीजें? तो कहते हैं मनुष्यत्वम, एक तो आपको जो है मनुष्य का शरीर मिला, और मनुष्यत्वम मतलब मैनलीनेस, कई मनुष्य होके भी स्त्री का नर नारी के रूप में प्रदर्शन करते हैं, कई नारी में नर का जो है रूप होता है, दो नहीं होता है। तो बोलते हैं दुर्लभ, ये तीन चीजें बहुत ही दुर्लभ हैं। अब आप कहोगे कि भाई कैसे आप दुर्लभ कहते हो, हम तो देखते हैं जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ती जा रही है, भारत की संख्या 130 करोड़ हो गई, आज से 50 साल पहले क्या था, 30-35 करोड़ थी, तो बढ़ती जा रही है। तो आप कैसे कहते हो कि आप जो है मनुष्य कमती होते जा रहे हैं, दुर्लभ है, कहाँ दुर्लभ है, लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं मनुष्यों से ज्यादा कोरोना की संख्या है, आपके भीतर जो बैक्टीरिया है, मनुष्यों के भीतर जो बैक्टीरिया है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप क्या सोचते हैं आपके पेट में एक बैक्टीरिया है, एक शरीर के अंदर कितने ही बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स, हम तो उनको भी नहीं कंपीट कर पाएंगे, बैक्टीरिया को नहीं कंपीट सकते, कोरोना को नहीं कंपीट कर सकते हम। तो आप कैसे कहते हैं कि भाई मनुष्य बहुत ज्यादा है? सचमुच मनुष्यों की संख्या अगर सारी प्राणियों, सारे प्राणी, आप जितने कीट पतंग पशु पक्षी पेड़, पेड़ भी जीव है, घास जीव है, इन सब की संख्या को जोड़कर देखिए मनुष्य की संख्या कितनी है, इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल है। तो मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है भाई, आप विशेषता बताइए। मनुष्य जीवन की विशेषता है क्या? विशेषता है कि मनुष्य जीवन में ही शास्त्र का अधिकार है, एक नंबर। पशु पक्षी या वनस्पति के अंदर किसी को भी शास्त्र का अधिकार नहीं है, शास्त्र का अधिकार, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो शास्त्र का अधिकार है। दूसरा, कर्म और ज्ञान का अधिकार है, कर्म का अधिकार है, ज्ञान का अधिकार है। दूसरी जगह कर्म का अधिकार नहीं है, वो सब के सब कंप्यूटराइज है, उनको निश्चित कर्म दिए हुए हैं, हर पशु पक्षी को कीट को एक निश्चित कर्म दिया हुआ है, अब वही कर्म करते हैं, दूसरे समय में नहीं आते। हम लोग कई बार यमुनोत्रियां बैठ बैठ के देखते हैं कि वो बीज आती हैं फूलों को जो है पोलिनेट करने के लिए, उनका वही जॉब है, बाकी समय नहीं है वो। अच्छा, कई किस्म के पक्षी आते हैं, डिफरेंट काइंड के, वो आते हैं ऐसे काम अपना करके निकल जाते हैं, दे केम फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, किया चले गए। मनुष्य जीवन में चार पुरुषार्थ का अधिकार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष केवल पुरुष या मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। मनुष्य जीवन में ही केवल राग और द्वेष और वासना का क्षय हो सकता है। मनुष्य जीवन में ही कर्म की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मर्जी है मेरी, हिंदी का प्रवचन है गीता का, मेरी मर्जी आएंगे कि नहीं आएंगे, कर्तुम अकर्तुम, हम तो टीवी सीरियल देखेंगे, देखो भाई अकर तुम नहीं आएंगे, अन्यथा कर तुम हम दूसरा काम करेंगे, आपको स्वतंत्रता है, भगवान नहीं आके बोलेंगे आप क्यों नहीं कर रहे हो। मनुष्य जीवन में ही परम का विचार है, उसकी प्राप्ति संभव है। हम अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं, ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हमें प्राप्त हो गया है ना, इस वास्ते हम सोचते हैं क्या है? इतने मनुष्य हैं, क्या दुर्लभता है इसमें, क्या स्पेशलिटी है? कोई स्पेशलिटी नहीं है। मनुष्य नाम सहस्त्रेशु, सहस्त्रेशु मतलब अक्षयवाचक, अक्षयवाचक मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, लिमिटलेस, अनगणित। कश्चित यतति सिद्ध है, कोई एक प्रयत्न करने वालों में, यत्न करने वालों में एक कोई करता है, हजार हजार में एक व्यक्ति सोचेगा मैं कौन हूं। अच्छा, तो यत्न करने वाले के गुण क्या हैं? कब उनके मन में आता है ऐसा विचार? जिनके अंदर विवेक वैराग्य की साधना थोड़ी बहुत की है, उनको मन में आता है मेरे को जानना है मैं कौन हूं, मेरे को भगवान को जानना है, उनके मन में आएगा। या कभी कभी सोचते हैं गुस्सा क्यों आता है मेरे को, क्या कारण है, कारण क्या है गुस्सा का? या क्यों हम कामनी कांचन कीर्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, हम जगत के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं इतना? क्यों नहीं हमें संतोष आ रहा है? हमने पहले कहा था कि हमारे पास में 100,000 हो जाए डॉलर बहुत हो जाएगा, फिर इंडिया में जाके उसको मल्टीप्लाइड बाय 70, उसके ऊपर हमें इतना परसेंट सूद मिलेगा, देन आई कैन एम्प्लॉय अ सर्वेंट एंड आई कैन लिव कंफर्टेबल लाइफ दिस एंड दैट। मगर जहां हमको 100,000 डॉलर हो गया, उसके बाद में हम सोचते कि नहीं ये तो नहीं सफिशियंट है, नाउ आई वॉन्ट 1 मिलियन। अब आपके पास अगर मिलियन भी है, यू नीड मोर। तैत्री उपनिषद कहता है कि अगर आपको पूरी पृथ्वी भी दे दी जाए तो आप दूसरी पृथ्वी मांगेंगे, दूसरी पृथ्वी मांगेंगे आप, तो कभी हम संतुष्ट नहीं होते। तो ये आपके मन में अगर प्रश्न आ जाए क्यों संतोष नहीं आ रहा है, या इतने दिन से सुनते आ रहे हैं कि भाई गुण को फॉलो करो, देवी गुण को लो, अवगुण को छोड़ो, आसुरी वृत्ति छोड़ो, निगेटिव टेंडेंसीज को छोड़ो, पॉजिटिव थिंग्स को लो, तो ये देवी गुण की हम जो साधना कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन के अंदर ये गुण आ जाएं, तो ये सब जो है यत्न करने वाले हैं। तो ऐसे जिनके मन में विचार आते हैं वो बोलते हैं लाखों में कोई एक बिरला, ऐसा समझ लो आप, लाखों में कोई एक बिरले के मन में ऐसा विचार आएगा, क्यों गुस्सा आता है, क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्यों मैं कामनी कांचन के पीछे छूटता हूं, क्यों मेरे को संतोष नहीं आ रहा है। अब आपको हम एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि यत्न करवाने वालों की संख्या बहुत कम है। कैसे कम है? देखो सारे पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं, बहुत मनुष्य हैं। अच्छा, गीता देखो किसी हिंदू के लिए नहीं है, गीता सारी मनुष्य जाति के लिए है। गीता के अंदर कहीं पर हिंदू वर्ड नहीं मिलेगा आपको, सारी मनुष्य जाति इसको फॉलो कर सकती है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन आप ले लीजिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बाद में फिर आप यहाँ पाजिए, हमारी यमुनोत्री की तरफ आ रहे हैं, हैं? वर्ल्ड से हम अमेरिका में आ गए, अमेरिका की पॉपुलेशन देखिए, फिर शिकागो की पॉपुलेशन देखिए, फिर यमुनोत्री के अंदर कितने हमारे डिबोटी हैं इसको देखिए, उन डिबोटियों के अंदर आप देखिए हमारे यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेंट 8 इंक्लूडिंग मी, तो कितने हैं? 7 पार्टिसिपेंट
ज्यादा है, दो तीन
अच्छा चलो 10 समझ लो,
11 है,
चलो 11 समझ लो, अब मिला के कितने हुए? 11 लोग हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेशु, कितने लोग हैं? अब कितने लोगों में है? इतने कम क्यों हैं? क्योंकि तत्व जानने की इच्छा जो है भीतर से आती है, और जिनमें नहीं आती है इच्छा, ऐसे लोग की संख्या बहुत है। 11 लोग छोड़ के बाकी जितनी जो संख्या है उनके मन में ये अभी नहीं आया। अच्छा, भगवान क्या करते हैं? जान के रखिए हर मनुष्य के जीवन के अंदर सीमित डोज का दुख भेजते हैं। हम सब ने दुख झेला है, सीमित दुख आता है, हमको भगवान सुधारना चाहते हैं। क्यों सुधारना चाहते हैं? अरे भाई कहाँ फंसे हुए हो, घूमो। तुम जहां फंसे हुए वहां केवल दुख ही दुख मिलने वाला है, वहां से हटो। इसलिए हमको दुख देते हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं। लो भगवान चाहते हैं कि हम जरा घूमें उनकी तरफ, उनका मुख हो, हमारा मुख उनकी तरफ हो, उनके अभिमुख हो, मगर हमारा, हम तो बस बाहर की वो जगत की परिस्थिति बदलने में लगे रह जाते हैं, भगवान की तरफ जाते ही नहीं है। और जाते भी हैं तो क्या मांगते हैं, परिस्थिति बदल दो, मेरा जॉब जा रहा है, परिस्थिति बदल दो, यही सब करते रहते हैं। यततम अपि सिद्धानां कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। और यत्नशील योगियों में जो यत्न कर रहे हैं, अब हमारे यहां आप लोग 11 योगी हैं, भगवान उनको कहते हैं सिद्धानाम, भगवान की भाषा में आप जो हैं सब सिद्धानाम हैं। आगे जाके भगवान बताएंगे कोई बहुत दुराचारी भी है और मेरी तरफ टर्न ले लिया है तो उसको साधु कहो, वो साधु है, हमने थोड़ी सी साधना को शुरू की और भगवान कहते हैं सिद्धानाम यततम अपि सिद्धानाम, जो चेष्टा कर रहे हैं उनमें से कश्चिन माम वेति तत्वतः, उसमें से यत्न कारण काफी हैं, मगर उन्होंने काफी दुख भी झेला है। दुख झेला मतलब देखो, कुछ लोग जो है घर बार छोड़ के श्रवण मनन निधि ध्यासन में चले जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बहुत कम लोग घर बार छोड़ के श्रवण मनन निधि ध्यासन में जाना, वेदांत कोर्स में जाना, सारी दुनिया में प्रचार करने के बाद में मुफ्त ज्ञान देंगे फिर भी हमको 100 लोग नहीं मिलते हैं सारी दुनिया में। कपड़ा भी देते हैं, मेडिकल बेनिफिट भी देते हैं, सब किस्म का उनको जो है सुविधा भी देते हैं, रहने के लिए घर भी देते हैं, डॉक्टर ऑन साइट मिलता है, बाहर आपको नहीं जाना है, सब कुछ, किताबें पढ़ने के लिए वो देंगे और स्वामी लोग पढ़ाते हैं, इन डेप्थ पढ़ाते हैं, मगर लोग नहीं मिलते। तो ये कौन लोग हैं जो वहां जाते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने भव सुख के अंदर दुख देखा है, जिनको ये पता लग गया है कि ये संसारिक सुख जो है ना, जो भासता है ये सुख है, रियली स्पीकिंग ये सुख नहीं है, ये तो दुख की योनि है, ये तो होम ऑफ सॉरो है। किन लोगों को मुक्ति मिलती है? फिर विवेक चुड़ामणि में शंकराचार्य जी ने लिखा, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्तम ततो विप्रता। एक तो जंतु नाम जितने भी जीव हैं उसके अंदर नर जन्म का पाना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद में पुंस्तम चाहिए, केवल नर जन्म मिलने, मनुष्य जन्म मिलने से ही आप ज्ञान के प्राप्त अधिकारी नहीं बन जाते, आप में पौरुष होना चाहिए, फिर उसमें विप्रता होनी चाहिए, वेदाभ्यासी विप्र। इस तरीके से वहां उन्होंने कई कैटेगरी किए, और उसके बाद में भगवान शंकराचार्य जी वहां कहते हैं मुक्ति न सत जन्म कोटि सुकृते पुण्य बिना लभते, बोले मुक्ति जो है वो ऐसे साधारण चीज नहीं आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? सत जन्म कोटि सुकृते पुण्य बिना लभते नहीं मिलेगा आपको। आपने पीछे जन्मों के अंदर पुण्य किया हुआ है तब आपको यहां पर संगत सत्संग मिल रहा है, जिसने पुण्य नहीं किया है वो नहीं आएगा। ज्ञान तो आपको मुफ्त मिल रहा है, क्यों नहीं लाइन लगी हुई है? आप बॉलीवुड के किसी एक्टर को, डांस को ले आइए, डांसर को ले आइए, एक्टर को ले आइए और कहिए फ्री है सब, देखिए भीड़ वहां कितनी लगती है। तो ये तो जब आप पुण्य करेंगे तब आपको यहाँ एंट्री गेट मिलेगी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यज्ञशाला के अंदर में बाहर में कोई गेट पर कोई गेट कीपर नहीं होता है, आपका एडमिशन कार्ड दिखाओ, आर यू इन्वाइटेड और नॉट, कोई नहीं है, मगर आप एंटर नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते। हमारे कलकत्ते में एक संत आए थे, प्रज्ञा चक्षु, आंख नहीं है मगर उनको जो है वो, उनसे प्रश्न करो, उनको शास्त्र के बारे में पूछो, सारे शास्त्र कंठस्थ, एकदम कंठस्थ। तो हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी उस टाइम में कलकत्ते में पोस्टेड थे। स्वामी अद्वैतानंद जी से उन प्रज्ञा चक्षु से पूछा कि महाराज हम लोग इतना यत्न करते हैं, लोग आते ही नहीं पढ़ने के लिए, हम तो यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हुए, वेदांत पढ़ाने के लिए बैठे हैं, इतना प्रचार करते हैं, आओ 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 आओ, लोग आते नहीं है। उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं मतलब उनके पास पुण्य की पूंजी नहीं है। बिन पुण्य मिले ही न संता, बिन पुण्य पुंज मिले ही न संता। पूंजी जब तक आपके पुण्य की नहीं है तब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, अधिकारी नहीं है। तो हम लोग कई बार यहां चिंता करते रहते हैं कैसे लोग स्टडी क्लास में आए, देखो हम लोग की ये चिंता लगी रहती है कैसे लोगों को जुड़ाया जाए, कैसे लोग जो है बच्चों को छोड़ कर चले जाते हैं, भीतर नहीं आते हैं। अरे क्यों नहीं आते हैं, उनको किसी ने मना किया क्या? इसलिए नहीं आते हैं कि उनकी पुण्य की पूंजी नहीं है। जिस दिन पुण्य की पूंजी हो जाएगी ना तो वो फिर खोजते खोजते हिमालय तक पहुंचेंगे कि हमें ज्ञान चाहिए, जैसे भी हमको ज्ञान चाहिए। एक महात्मा तो इतना तो कह दिया कि अगर शीश काट के भी ज्ञान मिले तो सस्ता ज्ञान, ये सस्ता है, शीश काट के भी अगर ये ज्ञान मिल जाए तो सस्ता है, अगर मुक्ति मिल रही है। तो कोई बिरला व्यक्ति भी मेरी कृपा से मुझको प्राप्त कर सकता है, मतलब हर आदमी उसको नहीं जान सकता। मेरा ज्ञान विज्ञान भी दुर्लभ है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। मुसलमान लोग जब आए थे यहाँ पर इंडिया में इन्वेट करने के लिए, तो एक ने वहाँ से कह दिया था, आते वक्त एक फकीर को वहाँ से हिंदू संत को ले आना, वो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, तो सब तो लाओगे ही तुम, जो कुछ भी है लूट उट कर जो भी मिलेगा वो तो लेके आओगे। एक किसी उसको संत को भी पकड़ के ले आना, महात्मा को भी पकड़ के ले आना। तो एक महात्मा के पास गए, वो लेटा हुआ था, वो बोले महात्मा जी आपको मेरे साथ चलना है। तो उसको पहले बोला हटो यहाँ से, तुम मेरी धूप को रोक रहे हो, मेरे को धूप सेकने दो। राजा मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो हमारे देश चलो। बोले नहीं जाएंगे हम किसी। तो दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक जो है मनुष्यों को श्रुति अभिमुखीकरण के लिए है, है? यहां पर भगवान ने बताया दुर्लभ मनुष्य जन्म है, नंबर वन। नंबर टू, दुर्लभतर क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न साधक बनना और दुर्लभतर है। और दुर्लभतम क्या है? अपरोक्ष अनुभूति वाले योगी दुर्लभतम है। पहला हुआ मनुष्य जन्म दुर्लभ है, साधन चतुष्टय संपन्न होना दुर्लभतर है, अपरोक्ष अनुभूति की प्राप्ति होना दुर्लभतम है। अब भगवत तत्व क्या है? तो भगवान परा एवं अपरा प्रकृति की चर्चा करेंगे एवं हमें अद्वैत वेदांत की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वालों में सिद्धों में भी जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं वे एक तरह से सिद्ध ही हैं। भगवान कहते हैं हम लोग सब सिद्ध हैं और उनमें भी कोई एक ही मुझे तत्व से यथार्थ जान पाता है। देखो ये स्पिरिचुअल नॉलेज की देखो महिमा नहीं बताए बिना जो है ना लोगों को समझ में नहीं आती है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज की जो है ना आप अगर कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करो, अच्छा नहीं पहले स्कूल से शुरू करते हैं। आप जब स्कूल में भर्ती हुए कभी किसी ने आपसे पूछा कि आप गीता पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, स्पिरिचुअल विद्या आपको कुछ आती है कि नहीं? नहीं पूछा। आपने जब शादी की तब आपके इन लॉज ने पूछा था? नहीं प्रश्न किया किसी ने। आप नौकरी में गए कभी आपसे किसी ने पूछा है गीता कितने अध्याय तक पढ़ी कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? इसका महत्व जो है इंपेरिकल वर्ल्ड के अंदर संसार के अंदर कुछ नहीं है। ये तो अपनी पर्सनल साधना है, हमको अपने आप को जग से उठाना है। तो इस ज्ञान को है हमें इतना हल्का करके नहीं लेना है, बहुत सिंसियरली लेना है। ये एक साइंस है, विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। ये घटेगा भगवान जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे अगर हम करें तो ये ठीक ठीक घटेगा। तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान बताएंगे। इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोता को सम्मुख करके अब भगवान कहते हैं अपनी अपरा प्रकृति के बारे में कहेंगे, फिर परा प्रकृति के बारे में कहेंगे, अपने स्वरूप के बारे में बताएंगे। वो ढाई श्लोक में बताएंगे। ढाई श्लोक मतलब श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 का आधा, ढाई श्लोक। ढाई श्लोक में भगवान परा प्रकृति एंड अपरा प्रकृति के बारे में बताएंगे। इसको हम अगले दिन देखेंगे, अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।